ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जो भी डेलीगेट्स बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएं। हॉल के अंदर जो अगला सत्र है वो आरंभ होने वाला है, तो डेलीगेट्स बैठ जाएंगे। जो भी खड़े हैं बैठ जाइए, आप सब सेटल हो जाइए। एक मिनट के लिए हम साइलेंस में रहेंगे। आप कृपया अपनी चीजों को नीचे रख दे, मोबाइल हो, बुक हो या बैग हो, नीचे साइड में रख दीजिए और एक मिनट के लिए ये सुंदर विचार करिए कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो एक श्रेष्ठ महान जगह है जहां से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत डीप एक संकल्प करेंगे कि मैं एक लाइट हूं, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई लाइट। और ये सकारात्मक ऊर्जा में वाइब्रेशंस में फैला रही हूं। इस सुंदर एनर्जी में सेटल हो जाए। और डीप कितना साइलेंस है, अंदर की शांति को देखें। बहुत वैल्यू रखती है ये शांति। हम बार बार ये अभ्यास करेंगे सारे दिन में ताकि हमारी सोच एकाग्र हो और हम फोकस्ड रहे। थैंक यू वेरी मच। तो इस सुंदर सत्र में आप सबका बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। तो हम सब जानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है परिवर्तन का, बदलाव का। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो अनेक विचार अंदर में मन में चलते हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो इस सुंदर विषय पर हम सबको प्रकाश डालने के लिए हमारे समक्ष बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और एमिनेंट अनुभवी वक्ता भी हैं। तो अब हम इनवाइट करना चाहते हैं आदरणीय अंबिका दीदी जी को। तो आपका बहुत 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 स्वागत है और स्वागत है। तो हम सबके समक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवत्सव जी हैं और हम इनवाइट करना चाहते हैं डॉक्टर जीएस पोपली जी, अगर हैं तो कृपया स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जी एस पोपली, आदरणीय शशि दीदी जी जो हमें शांति का अनुभव कराएंगे, जो सतना से यहाँ पर पधारे। शशि दीदी जी अगर हैं तो कृपया आप ही स्टेज पर आ जाएं। तो इस सत्र को शुरू करने से पहले हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है वो शांति है और यहाँ शांति प्रिय लोग हैं। और शांति की इस दुनिया में ले जाने के लिए बहुत ऐसे साधन होते हैं जैसे म्यूजिक है, गीत है, डांस है, लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत डिवाइन सोल्स हैं जिनकी आवाज से भगवान की अनुभूति हो, महिमा हमें पता चले, वाइब्रेशंस का अनुभूति हो, तो अभी हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारे डिवाइन ब्रदर रेस्पेक्टेड हरीश मोयल जी स्टेज पर आएंगे और एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर पुपड़ी जी, आपका भी स्वागत है। इस सत्र को हम बहुत डिविनिटी से शुरू करेंगे, तो आप सब हरीश भाई जी का गीत सुन करके ये अनुभव करेंगे कि हम इस लोक में नहीं है लेकिन दूसरे वाइब्रेशंस में है। तो उनका भी बहुत 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 दिल से स्वागत है।
ओम शांति। तो परमात्मा को याद करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे और मेरी पीठ हो रही है, मेरे पास कोई चारा नहीं है दूसरा। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।
है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। बाबा तेरी याद में, दाता तेरी याद में, या रब तेरी याद में, बाबा तेरी याद में।
ओम शांति। हमारे रेस्पेक्टेड हरीश भाई का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो यही लगता है कि हम गीत सुनते ही रहे, इतना डिवाइन आवाज जो हर मन को छू ले। फिर से उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मंच पर आसीन हमारे गेस्ट हैं तो उनका तिलक और बुके से स्वागत करेंगे। स्वागत है। बैजेस, तिलक और बुके से स्वागत है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवत्सव जी का, तो इस सेशन का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है, द चैलेंज ऑफ चेंज। बदलाव से जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं प्रकृति का एक सुंदर और बहुत कड़ा नियम है परिवर्तन, चेंज। और परिवर्तन सिर्फ भौतिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी परिवर्तन कई बार हम देखते हैं। तो मानसिक जैसे घटता जाता है हमारे अंदर गुण, हमारे अंदर की शक्तियां, तो हमारे अंदर की वैल्यूज। तो बदलाव छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसके लिए अंदर की बहुत तैयारियां चाहिए, बहुत प्रिपेयरनेस चाहिए। क्योंकि बदलाव जो है, परिवर्तन एक अनिश्चितता लाती है और जो अनिश्चित होता है अंदर की, हमारे अंदर एक जैसे कि एंग्जाइटी पैदा करता है और क्या होगा, कैसे होगा, ये बदलाव कैसे हम ले सकेंगे। तो ऐसे बहुत प्रश्न हमारे अंदर, मन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इस सुंदर विषय पर हम सबको बहुत ही प्रकाश डालने के लिए एमिनेंट स्पीकर्स हम सबके सामने हैं, जो अनुभवी भी हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में और दुनिया में। जो बदलाव हम देख रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में, तो ऐसे अनुभवी वक्ता को हम पा करके बहुत ही धन्य हो गए। तो पहले हम इनवाइट करना चाहते हैं डॉक्टर जीएस पोपली जी को, जो कि सीनियर प्रोफेसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च एफिलिएटेड टू जीएसआईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो आप, हम निवेदन करते हैं प्रोफेसर जीएस पोपली जी से अपना वक्तव्य प्रदान करें।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी, चेयरपर्सन ऑफ द सेशन, देन राजयोगिनी बहन बी के सिस्टर अंबिका जी, राजयोगिनी बहन बी के शशि जी जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क भोपाल, बी के सिस्टर छाया जी हु इज कोर ग्रुप मेंबर स्पार्क बेंगलुरु एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस session. And my dear brothers and sisters, I am very privileged and happy to be here to participate in this session because of the regular follow-up Sister Yeshuji, and I believe, I have a reason to believe that for the last 2 years we are feeling that there is an urgent need to change ourselves. Are you with me? Because by seeing the positive vibration here, and when we are coming from our professional life, from family life, when we come here, positive changes are seen. And the journey has already started. We must have done our SWOT analysis: strength, weaknesses, opportunities and threat. Everyone should do it, if not done till now. Only then we will be able to change ourselves. Swami Vivekananda said, if my mind can believe it, my heart can receive it, and my hands and legs can do for it, I know I am going to achieve it. And we do agree that there are so many things where we don't have control. One philosopher says, rather prays, God give me strength to change which I can change, the things which are in my control, myself, my indriyas, jnanendriya, karmendriyas, they are in my control, I can change. But the person in front of me, whether family member or the students or society, neighbor, whatever, I don't have control on them. But I can pray, God give me tolerance to tolerate them. Because with the passage of time, by seeing your behavior, they can melt down and they can change. And third prayer, O God, give me wisdom to differentiate between the both, what I can change and what I cannot change. Dil mein khayal nek sab aate hain iske niyaz se. Ye khayal bhi isi kripa se aa rahe hain. Yahan pahunche hain ye bhi Baba, Brahm Baba ki blessing hai. Ya kisi, jaise Yeshu behan ki persuasion se hum yahan aaye. Kisi na kisi ka jeevan mein role hota hai. Dil mein khayal nek sab aate hain iske niyaz se. Karam ho mera bas itna ke unko parwaaz de. Jo achhe thoughts aate hain, unko chalne de, roke nahi. Don't be obstacle. Dil mein khayal nek sab aate hain iske niyaz se. Karam ho mera bas itna ke inko parwaaz de. Ye baat bhi deegar hai ke auron ke kaam aa sake. Wo thoughts, wo cheeze dusron ke kaam aa sake, wo bhi acha hai. Par kya khoob ho musafir jo khud ko bhi sawar de. Kya khoob ho musafir jo khud ko bhi sawar de. Taaliyan to baja dijiye mere khayal. Kyunki jo khayal khayalon mein reh jaye, uska koi vishesh labh hone wala nahi. Sansar mein koi aisa vyakti nahi hai, ya jo main baatein bhi PPT ke dwara present karunga, aap jante nahi honge. Lekin kis waqt inka istemal karna hai, wahan chook ho jati hai. Barsaat ho rahi hai, barsaat pe mera niyantran nahi hai, chhata mere paas hai, main kholna bhul jata hu. This is what happens with me. Main sach mein bata raha hu. Institution mein director rahe, kai baar faculties ko, kai baar bachchon ko, kai baar ghar mein, baad mein sochte the yaar chup hi rehte to zyada acha tha. Hai hota na, sabke saath aisa hota hai. To paristhitiyan aati rahengi, jaati rahengi. Abhi bhi Surya bhai ne kaha, samjhaya, paristhitiyon par niyantran ho bhi sakta hai, nahi bhi ho sakta. Par sabse pehle to wish, jaise Swami Vivekananda ne kaha, ki mere dimag mein aa jaye ki kuch haan change hone ki zarurat hai. Aur wo hum do din se anubhav kar rahe hain ki haan waqai bhag dhod bhari zindagi se hum guzar rahe hain, chale ja rahe hain, chale ja rahe hain, chale ja rahe hain. कोई रुकने का नाम ही नहीं, और जाते वक्त कुछ साथ भी नहीं उठा के ले जाना, ये भी सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात दिमाग में आनी चाहिए कि ये परिवर्तन है। एक किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि कोई बात अब ठान लेते हैं मन में कि मुझे परिवर्तन करना है, 21 दिन 21 डेज उस बात को टिके रखने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब वो बात कहीं दिमाग में आती है कि हाँ मुझे चेंज होना है। पहले तो सुनते ही नहीं ध्यान से, बच्चों की बात कर रहा हूं, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, उर्दू के शब्द हैं, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। ये चार शब्द हैं उर्दू के, दुआ और दगा, महरम और मुजरिम। एक जैसे संस्कृत में हलंत होता है ना, जो पुराने लोग बैठे हैं उर्दू लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं और वो नीचे बिंदी लगती है, दुआ की बजाय दगा पे लग गई उलट हो गया, मुजरिम की बजाय महरम पे लग गई उलट हो गया। महरम कहते हैं जो आपका वेलविशर है, और मुजरिम जो आपका गुनाहगार है, आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। तो पहला स्टेप तो बहुत अच्छा शुरू हो गया कि हम ब्रह्म बाबा की कृपा से ऐसी जगह आ भी गए और बात ध्यान से सुन भी रहे हैं। मैं यहां से देख रहा हूं सारे वक्त बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और इसीलिए मैं बीच बीच में शेर बोल देता हूं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहले तो ये दिमाग में आ जाए कि मुझे परिवर्तित होना है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ है चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। अभी बीके भाई ने प्रोफेशनल लाइफ का भी जिक्र किया, बच्चों से बात करते हैं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ है इसके पास, जितने प्रोफेसर सीनियर्स लोग हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये मेरा जाती अनुभव है, आप भी देख सकते हैं, जस्ट सिट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा बैठी साथ उसके, वो ऐसे पेश आएगा कि जैसे इससे कोई बड़ा दुखी इंसान ही जीवन में नहीं है। उसका कारण यह है कि जो हमारे पास है उसको हम भोगना भूल जाते हैं, जो नहीं है उसके पीछे भागते 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 इस जीवन को भी निकाल देते हैं। पुस्तक पढ़ने का शौक है तो मैंने पढ़ा कि सीनियर पर्संस लिव पुअर बट डाई रिच। इसका अर्थ यह था कि अपने जीवन में वो खर्च नहीं करना जानते, अपने ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं, बच्चों पे, परिवार पे, इस पे उस पे, बाएं दाएं, स्पेशली बहनें, पहले परिवार को खिला के सब कुछ देख के उसके बाद खाना बच गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी से काम चला देते हैं। जब मैं घर से बाहर होता हूं, मेरी एक डॉटर है वही प्रोफेसर है, तो वाइफ को मैं देखता हूं, वो कहती चलो कोई ना बेटी आज है ना कोई और है तो चलो आज जो कुछ बचा उसको खा लेते हैं। लास्ट में देखते हैं कि मैं बैंकर भी रहा हूं, बैंकों में इतना पैसा अनक्लेम्ड है, इतना पैसा अनक्लेम्ड है कि कोई किसी को बताया भी नहीं कि पैसा है कि नहीं है। तो पहली तो शर्त यही है कि अपने आप को परिवर्तित करें, जो परमात्मा ने दिया है उसका शुक्र मनाना सीखें, जीवन में शुक्राना आ जाएगा ना, आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चेंज होना है, कुछ ये मैं स्लाइड्स आपको पढ़ देता हूं। ये कुछ फिलोसफर्स ने कहा है, चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ, जीवन परिवर्तित हो रहा है। ये मैं जब पैदा हुआ ये बाल मेरे सफेद नहीं थे, ये बाद में हुए हैं। आपके साथ भी यही है, बचपन जवानी बुढ़ापा प्रोसेस ऑफ लाइफ है, चेंज हो रहे हैं। एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर, उनका जो भविष्य है जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा। इसलिए पास्ट को फॉरगेट, वो जो हो गया हो गया, अब जो है हमें चेंज होना है। देयर इज जनरेशन गैप। दिक्कत यही है कि हम दूसरे वाले को बदलना चाहते हैं, घर में हस्बैंड वाइफ है वो दूसरे को बदलना चाहते हैं, बच्चे मां बाप को बदलना चाहते हैं, मां बाप बच्चों के थॉट्स को, मां बाप को तो क्या बदलेंगे, थॉट्स बदलना चाहते हैं कि ये पुराने जमाने की सोच है। तो जो यंग बैठे हैं उनसे भी कहेंगे भाई हमारी जनरेशन ने जितना चेंज देखा है ना उतना शायद आपके जीवन में परमात्मा करे ना आए। कल तो डराई दिया, डॉक्टर धर बोल रहे थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, बाद में खुद भी उसी लाइन पे आ गए, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज परमात्मा ने अपने हाथ से आपको बनाया है। और जो प्रकृति के साथ बैठिए, देखिए कौन कबूतर को रंग देता है, कौन शतरंग बनाता है, कौन गिलहरी पे निशान लगाता है, कमाल का सिस्टम है। एक एक चीज में आप देखेंगे परमात्मा का समझ आएगा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा बोल रही है, मेरे अंदर जो आत्मा बोल रही है, दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। ऑल दी ऑर्गन्स हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, सो वी मस्ट बी थैंकफुल एंड फॉरगेट द पास्ट। जस्ट चेंज योर सेल्फ एज पर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड एंजॉय द फ्यूचर। एंड फ्रेड डेविटो कहते हैं, इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट वॉन्ट चेंज यू। क्योंकि जो जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, उसमें हम परिवर्तित नहीं होना चाहते। चैलेंज करना पड़ेगा अपने आप को, उसके लिए स्वेट एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, रेस्ट्रोस्पेक्शन, ये सारी टर्म्स हैं कि रोज छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए, घर से शुरुआत करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर का जो वातावरण है उसको पॉजिटिव बनाइए, वाइब्रेंट बनाइए। कल भी परसों शायद कोई वक्ता कह रहा था कि किसी घर में जाते हैं आप तो वहां उठने का मन नहीं करता, पॉजिटिव वाइब्रेंट होता है। और कहीं आप जाते हैं, भले ही एसी चल रहा हो, सोफा सेट चल रहा हो, छप्पन भोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, छप्पन पदार्थ आगे रखे हो, तभी आदमी कहता फटाफट निकलो यहां से, ऐसा होता है ना। व्हाट हैपन्स टू अस, सो काइंडली चेंज योर लाइफ वाइब्रेंट। एक प्रोफेसर साथी थे, वो कहते हैं, वो बड़े खुश रहते, उनका चेहरा बहुत स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी। मैं कहा आप क्या करते हो, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि मैं अपने 5 मीटर के डायमीटर को हमेशा खुशनुमा रखता हूं। वेयर एवर आई गो आई ट्राई टू मेक इट हैप्पी एंड एक्सेप्टेबल। ये चैलेंजेस हैं, इसको पढ़ लें, सभी आप जानते हैं, क्योंकि और वक्त ही बैठे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और कोई इससे पहले मुझे कहे रुक जाओ तो मैं खुद ही रुक जाऊंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, हम विरोध करते हैं, कोशिश करते हैं पहले कि नहीं, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक टॉप लेवल की सपोर्ट ना हो चेंज नहीं कर सकते। घर के अंदर भी ऐसा ही है। लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई चेंज, वो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स सामने होने चाहिए। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अधूरा है, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, सुझा के बैठ जाएंगे, पुनिश करेंगे, बट कम्युनिकेट करिए, कहिए। हालांकि बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, उसको समझ आ जाए सामने वाले को कि मम्मी क्यों नाराज है, पापा क्यों नाराज है। बट द बेटर वे इज कम्युनिकेशन टू वे, उसकी सुन तो लो, हो सकता है कि वो सही हो अपनी जगह। लैक ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज दीजिए। बच्चा चेंज होना चाहता है, अगर आप चाहते हैं मोबाइल से ना खेले तो फिर कोई और चीज दीजिए ना। किसी कई घरों में जाता हूं मैं, वो इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं म्यूजिकल के, स्पोर्ट्स का सामान पड़ा होता है। अभी हमारे साथ एक आए हैं, उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग है, तो ड्राइंग का शौक है, तो उसको मैंने खुद असाइनमेंट दिए, बैठे बैठे भी ये काम करो। आर यू गेटिंग मी? अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को दीजिए। प्रॉब्लम ऑफ चेंज फटीक, जब आप परिवर्तन करते हैं, नया जीवन स्टाइल आता है, नए काम आते हैं, तो फटीकनेस आती है, तो उसका क्या सुधार है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल लाइफ में अगर अकाउंटेबल आप हैं, एक कड़ी है तो पूरी कड़ी के लिए तो चाहिए, एक कड़ी से और कड़ी। वावस्था जब हो जाती है, रस्में उल्फत में पड़ के जंजीर बड़ी हो जाती है, मिलजुल के रहो, सदकर्म करो। अरे मुसाफिर हम तो आखिर इंसान हैं, मुसाफिर हम तो आखिर इंसान हैं। पत्थर भी कहीं अगर मिल जाए दीवार खड़ी हो जाती है, पत्थर भी कहीं अगर मिल जाए दीवार खड़ी हो जाती है। जब मिलजुल के सारे काम करेंगे तो सक्सेस आएगी। ये तो थी प्रॉब्लम, ये कुछ सॉल्यूशन दिए मैंने। रेजिस्टेंस टू चेंज को कैसे खत्म करें? कम्युनिकेट इफेक्टिवली ऑन द रीजंस फॉर चेंज, टॉक ऑन बेनिफिट ऑफ चेंज, इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने लोग हैं जो प्रभावित होंगे उन सबसे बात करें, टेक देयर इनपुट्स, उनकी राय लें, रिजॉल्व इश्यूज, क्यों चेंज का परिवर्तन कर रहा है भाई, क्या इश्यू है, कंसर्न क्या है आपके, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहिए, बार बार यहां बाबा के दरबार में आते रहिए, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड फुल सपोर्ट, पूरी ट्रेनिंग को, कि जैसे बच्चे हैं माँ बाप को मोबाइल के सारे सिखाएं उनको, मम्मी आपने मोबाइल नहीं उठाया, मेरे को जवाब नहीं दिया, आता ही नहीं है, बताइए ना उनको, ऐसे ही ऑफिस में सिलेक्ट टीम ऑफ एक्सपीरियंस चेंज एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो एक्सपर्ट हैं, जो लीड कर रहे हैं, लीडिंग रोल पे हैं, वो चेंज एजेंट माने जाते हैं, उनको देख के उनको पूछ के आगे भी चेंजेस आएंगे। लीडरशिप सपोर्ट, मेक चेंज मैनेजमेंट प्लान्स, प्लान बनाइए पूरा तौर तरीके से, ऐसे नहीं, पूरा फुल प्रूफ प्लान हो एक एक चीज का। लीडर्स एट ऑल लेवल्स मस्ट शो विजिबल सपोर्ट, वो विजिबल सपोर्ट नजर आनी चाहिए कि हाँ वो भी चाहते हैं ऐसा, एंड डेमोन्स्ट्रेट देन इफेक्टिवली, जब भी मौका मिले एम्प्लॉयज से बात करें, स्टेक होल्डर से बात करें, तो उनको नजर आना चाहिए कि मैनेजमेंट साथ है, चेंज चाहती है, टू डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करें, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, स्मार्ट गोल्स की बात यहां की है, नोट करना चाहें कर लें, एक टर्म है मैनेजमेंट ने, स्मार्ट गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हों, कोई डाउट कोई एम्बिग्युटी ना हो, स्पेसिफिक टारगेट्स हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रिलेवेंट हों, टाइम बाउंड हो। तो सिस्टर आ गई है, पीपीटी पड़ी हुई है, मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं तो भाई जितना कहो उतनी देर बदल सकता हूं, मैं एक शेर लास्ट सुना के दीदी अगर जा जाए तो पीपीटी यहां से पढ़ लेना, ले लेना, सिंपल बातें, कहानी बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमे बदल सकते हैं, तराना बदल सकता है, कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमे बदल सकते हैं, तराना बदल सकता है, शर्त है मुसाफिर अपनी निगाह बदलें, शर्त है मुसाफिर अपनी निगाह बदलें, दोस्तों हिंदुस्तान तो क्या जमाना बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीदी,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने कहा कि अगर चुनौतियां चैलेंजेस नहीं है तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो हम सब अभी एक छोटा एक्टिविटी करेंगे, आप सब रेडी हैं? तो आपसे निवेदन है एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं स्टेज पर, जो बैठे आप सब बैठे, आप सब खड़े हो जाएंगे, और आपके अगर बगल में सीट खाली है तो आप वहां जाकर बैठ सकते हो, कहीं भी जगह खाली है तो वहां जाकर बैठ सकते हो, आपके बगल में अगर सीट खाली है तो वहां जाके बैठ जाएंगे, जहीं कहीं भी जगह खाली है तो बैठ जाएंगे, प्लीज जल्दी करिए, वेर एवर देर इज वेकेंट प्लेस प्लीज ऑक्यूपाई योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यस। अभी आपका वो जो पुराना सीट है कितना खींचता है, नहीं डेढ़ घंटे से वहां पर बैठे हैं, वो मेरी जगह है, दैट वॉज माई सीट, वो मेरी जगह है, मेरी जगह है, तो कितना खींचता है ना, यस yes। तो ये जो बदलाव है तो कितना हमें पुरानी आदतों की तरफ ले जाता है, पुराने संस्कार की तरफ ले जाता है, पुराने थॉट्स संकल्प की ओर ले जाता है। तो बार बार जब भी कोई चेंज आए तो हम पीछे हटते हैं, पुराने इसमें चले जाते हैं। तो ये जो बदलाव परिवर्तन है, परिवर्तन एक प्रक्रिया है, तो इस फ्लो में जाने के लिए तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, तो हम सुनेंगे अभी आदरणीय अंबिका दीदी जी से, जो बेंगलोर वीवीपुरम सब जोन के डायरेक्टर हैं, मोर देन 50 इयर्स का एक्सपीरियंस एज सरेंडर सिस्टर है, और फिर स्पार्क विंग के चेयरपर्सन है, देश विदेश में अनेक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में तो आपने अपना अनुभव के बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणादायी बोल शेयर किए हैं, और अनेकों लोगों को लाभान्वित करते हुए दीदी जी ऐसे बहुत ही बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जैसे बैकबोन भी हैं, और आप सब जानते हैं कि ज्ञान और योग की गहनता तो उनकी एक खूबी है, विशेषता है। तो ऐसे आदरणीय अंबिका दीदी जी का हम बहुत तहे दिल से अभिनंदन भी करते हैं और इस सुंदर विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। आदरणीय अंबिका दीदी।
ओम शांति। आदरणीय मंच और मेरे सब भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन नेचर की प्रकृति और मनुष्यात्माओं की एक बहुत बड़ी स्वभाव है। अगर आप इस सूक्ष्मता को जितना अच्छी तरह से समझेंगे तो हर परिस्थिति में परिवर्तन होना आपको बहुत सहज अनुभव होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ, व्हाट आर ऑल द एरियाज फ्रॉम वेयर वी गेट द चैलेंजेस। तो हमारे आदरणीय भ्राता बहुत सारी बातें, जहां जहां से आते हैं चैलेंजेस, वो सारा बहुत सुंदर तरीके से आपको रखा। तो पहले घर से जो चैलेंजेस आती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन से जो आती है, फिर जहां जॉब करते हैं वहां अपने बॉस, अपने जो कोलीग से, वहां से भी चैलेंजेस कई आते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, युवा, सारी जो मानवता है उनके आगे बहुत सारी चैलेंजेस है। छोटे बच्चे को भी पूछिए, वो कहेगा मुझे बहुत बड़ी चैलेंज है, हमारा टीचर इतना इतना होमवर्क देता है, मेरा जो खेल पाल है कुछ भी है सब खत्म है, और सारा इतना सारा बोझ उठा के जाना पड़ता है। दैट इज हिज चैलेंज ऑफ द लिटिल माइंड। तो ऐसे जो चैलेंजेस है दुनिया में, फिर सोसाइटी में, फिर देश में जो होने वाले बदलाव है, फिर प्रकृति में होने वाले बदलाव है, यहां से जो भी बदलाव आता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, दैट इज अ बिग चैलेंज इन लाइफ। तो उतना ही नहीं, बड़े से बड़े चैलेंज जिस शरीर में हम रहते हैं, सडन चेंजेस इन द बॉडी, सडन अप एंड डाउन इन द बॉडी, दैट इज वन मोर द बिगेस्ट चैलेंज। वेर लोग कहते हैं हम सब करना चाहते हैं लेकिन हमारे शरीर साथ नहीं देता तो मैं कर नहीं पाता हूं। तो दूसरी बात, द बिगेस्ट चैलेंज अमंग ऑल दीज थिंग इज माई ओन वीकनेसेस, माई ओन ड्रॉबैक्स, जो भी है अंदर, हम हमारी जो क्षमताओं की कमी है, विशेषताओं की कमी है, जब चैलेंजेस आती है उस बदलाव को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो वहां हम फेल्यूर महसूस करते हैं। तो जिसके कारण कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग तो वो सुइसाइड भी कर लेते हैं। जो मेरे आगे जो दो मास से जो रिजल्ट्स से उसके आधार से मैं आपके आगे ये सारा बातें रख रही हूं। लेकिन एक बात हमें रियलाइज करना है कि हम बड़े हैं, हमारी ताकत बड़े है, हमारी जो सूक्ष्म पावर्स है, मेंटल पावर्स है, वो बहुत बड़ा है। ये चैलेंजेस जो भी है, जितना भी बड़ा हिमालय के रूप में आए, वो सभी बहुत छोटा है। आप लियो तो बड़ा है, नहीं लियो तो बहुत छोटा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो जब हम ये बातें लेते हैं तो क्यों लेते हैं, चैलेंज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि पहले जो कमी है अपने अंदर, जो अडैप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चैलेंजेस आता है उसको सहज तरीके से स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग, तो ये बातें जब नहीं होती है तो फिर हम बहुत उसको भारीपन महसूस करते हैं। तो जैसे मैं आपको दो तीन उदाहरण के तौर में रखना चाहती हूँ। घर में एक आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ा कमिश्नर थे, जिसमें उनके बच्चे उनके बातें नहीं मानते थे और वो थोड़ा डिप्रेशन भी है और कहीं संग दोष पे भी है। बहुत कुछ ट्रायल करने के बाद उनकी जो कार्य क्षेत्र में उनका बहुत नाम था, कार्य क्षेत्र में वो बहुत हानिश थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो छोटी सी बात ने उनमें वो जो क्षमताएं थे ना, उसमें बहुत सारी बदलाव आ गई। तो माना वो सहन नहीं कर पाए, वो जो कमी है उसका भविष्य को सोच सोच करके घर में एक अशांति, दुख के वातावरण छा गया। जो एक दिन मेरे से पूछा, दीदी एट लास्ट व्हाट टू डू फॉर दिस प्रॉब्लम, ये मेरा शांति छीन गई, नींद छीन गया, क्या करे। तो इसका जो सल्यूशन था, जब वो उन्होंने ज्ञान समझा, मेडिटेशन समझा, उसको अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो भी पावर्स है हमारे जीवन में मेडिटेशन के आधार से, द विजडम, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको समझते हुए हम सिर्फ रखे नहीं लेकिन जब यूज करते हैं तो अपने बच्चे पर भी उन्होंने जब लागू किया तो बदलाव आने लगा। ये बात है। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे आजकल से गैजेट्स आर द बिगेस्ट, मोबाइल्स आर द बिगेस्ट, एआई इज द बिगेस्ट चैलेंज, डिजिटलाइजेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ऑल द वे। तो ये सारी बातें अगर हम इसको बहुत सूक्ष्मता से समझ के जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे ही आपका, माना आपका बड़ा चैलेंज हो सकते हैं, आपके बच्चे। तो जो हमें एक माता पिता आए, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन उसमें एक का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। तो वो पहले से देखिए माँ बाप की पेरेंटिंग में कितना, माना थोड़ा सा केयरलेस, हम भविष्य ना सोच करके उनको चुप कराने लिए मोबाइल्स देते गए। वो जब बड़े बनते गए तो वो इतना एडिक्टेड हो गए, जो एक सेकंड भी मोबाइल बिगर नहीं रह सके। जो मोबाइल अगर ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं, अटेंशन डिफिसिट डिसीज जो है ना, हर एक पेरेंट को ये बात मैं रिक्वेस्ट से कहना चाहती हूँ, बच्चों को मोबाइल देने का टाइम जो है आफ्टर 16, उसके पहले अगर आप मोबाइल दे देंगे, उनकी एडिक्शन ऐसे आएगा, उनके अंदर कई सारे बीमारियां आएगा, विच इज अवर रिसर्च रिपोर्ट है। अटेंशन डिफिसिट इन चिल्ड्रन, नॉट ओनली इवन यूथ, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर जो आता है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, एकाग्र नहीं हो पाएंगे, उनका स्टेबिलिटी खत्म होती है। तो उनकी जो जीवन शैली है, माँ बाप के साथ जो चलना, जो रेस्पेक्ट, वो सारी खत्म हो जाती है। तो वो आके कहा, तो मैं बच्चों से इतना तंग हूं तो मैं क्या करूं भी, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए भी मैं मोबाइल लेता हूं तो बच्चे सारी टीवी तोड़ देते हैं, घर की सारी सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं। इट इज ए ह्यूज, ही वॉज वेरी बिग ऑफिसर, बट इट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, बिग चैलेंज टू मी। तो ये जो बातें हैं, माना हम हर समय हमारे, माना दूरांदेश बुद्धि यूज नहीं करते हैं। जो भी बातें हमारे जीवन में एप्लीकेशन में आते हैं, उसमें हम कितना अटेंशन रख करके चलना पड़ता है, वो नहीं है तो फिर बहुत आगे चलते हुए वही आपका बहुत बड़ा कारण बन सकता है दुख अशांति की, और आपकी क्षमता है जो कार्य करने की, जो क्षमता है वो घट सकता है। और तीसरी बात, ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम काम करते हैं, अगर आप बाहर से तो कोलिक से, बाहर से तो सबॉर्डिनेट से जो चैलेंजेस आते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, वहां जो चेंजेस लाना चाहते हो उसको रेजिस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है? तो या तो कोलिग से आपस में अपनी कमियों के कारण, कंपटीशन के कारण, जलसी के कारण जो बातें आती है, तो उसमें भी हमें कई शक्तियां, कई गुण चाहिए जिसके आधार से हम जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको समाप्त करने के लिए हमें एज ए लीडर, इफ यू वांट टू लीड देन आई शुड बी ए हम्बल पर्सन। और उतना ही नहीं, हम हरेक आत्माओं की भावनाओं को समझते हुए, हरेक की सजेशंस को रेस्पेक्ट देते हुए, जब हम उस रीति से हम चलते हैं, तभी हम बहुत कुछ अपने सारी संगठन से, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनसे जो प्रोडक्टिविटी, द क्रिएटिविटी ज्यादा करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। अगर इसकी कमी है, सिर्फ बासिज्म है, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा ऑफिसर थे, तो वो रैंक के आधार से बहुत बड़े बन गए, वहां मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में आ गए, लेकिन वहां जो काम करने वाले थे 20 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, तो वो जब आए तो सबको ये करो वो करो वो करो, ही वॉज जस्ट ऑर्डरिंग। तो फिर सारे सबॉर्डिनेट्स वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो ही वॉज अनॉयड। तो फिर सभी मिलकर के ऊपर लिखा कि इस ऑफिसर को निकालो इधर से। तो एक छोटी सी कमी, एक गुणों की, कुछ शक्तियों की कमी जो भी है, हर एक के लिए एक रेस्पेक्ट हो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो और अपनी सेल्फ एस्टीम पर भी रहे हम, फिर जो भी हमें करना है वो सारा वो नम्रता पूर्वक प्यार से हम करें, हर एक को समझते हुए करें, हर एक को आगे बढ़ाए, हर एक को सपोर्ट करें, उनको उनका हिम्मत बढ़ाए। अगर ये हम नहीं करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत फलीभूत नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं एक उदाहरण हमारे ब्रह्मा बाप की, आपने हिस्ट्री तो सुनी लेकिन ब्रह्मा बाप की एक बात मैं सुनाना चाहती हूँ, कैसे उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस को, हमारी दादियां जो हेड्स थे, प्रकाशमणि जी हो, दादी जानकी जी हो, तो उन्होंने कैसे ये प्रैक्टिकल रूप में इन चैलेंजेस को जो आए उसको फेस किया। सी 350 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स थे, जिसमें थोड़े भाई थे लेकिन उसमें 80 चिल्ड्रन वर देर एंड ऑल द यंगस्टर्स सिस्टर्स वर 16, 17, 18, 19, 21 इज द लास्ट वन। तो इतने सारी बहने थे, एक दिन था, वन डे देर वॉज ए टेलीग्राम, यूर इंस्टीट्यूशन इज बैंड। तो आप सोच सकते हैं इतने बहनों को लेकर के ब्रह्मा बाप कहां जाए। उन्होंने थोड़ी सी भी ना चेहरे पर परिवर्तन, ना संकल्प में परिवर्तन, तो उन्होंने कहा सारे बच्चे चलो सारे सामान बाहर रखो, किसी को कुछ भी पता नहीं बाबा क्यों बोल रहे हैं सारा सामान बाहर रखो। तो ये जो चैलेंज, इतनी बड़ी चैलेंज, और मुस्कुराते हुए जब बाबा कहा, बच्चों ने समझा कि हमें कहां टूर में ले जा रहे हैं बाबा, वो सारा बहुत प्यार से जल्दी जल्दी सारा बाहर रख दिया। फिर कहे क्या करें, फिर तो बोला नाउ आप परमात्मा बाप को याद करो थोड़ा देर, फिर चलेंगे। तो 20 मिनट 25 मिनट के अंदर वापस टेलीग्राम आया, बैंड इज कैंसल्ड। तो ये है हमारी थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी सहनशीलता, और जो भी बातें आती है उसको अकोमोडेट करे, जल्दी जल्दी एंग्जाइटी में नहीं आए, क्या करे कैसे करे, इतनों को लेके कहां जाए, ब्रह्मा बाप बोल सकते थे, कह सकते थे, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ा। बाद में जब पूछा गया तो बाबा ने कहा सिर्फ वो भी बड़ों को कि दिस वॉज द पॉइंट। तो फिर बाबा बहुत प्यार से कहा बच्चे फिर कब चलेंगे, फिर अंदर वापस रखो, ताकि बच्चे फंक ना हो जाए कि बाबा निकालने लिए कहा फिर वापस रखने लिए कहा। तो फिर बच्चों ने बहुत प्यार से किया। ऐसे हजारे उदाहरण है, बहुत बड़े बड़े बातें जब आए तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे इनोसेंट है, वो अनजान है, परवश है, तो टुडे और टुमारो दे विल अंडरस्टैंड। तो ऐसे मना हर परिस्थिति में फर्गीव एंड फर्गेट। तो हरेक के प्रति कोई विघ्न रूप भी है, आपको पांव खींचने वाला भी है, लेकिन जब आपकी शुभ भावनाएं हैं, गुड विशेस है, उनके प्रति एक रहम है, और परमात्मा बाप की याद में अगर पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशंस उनको भेजते हो तो बहुत सारी समस्या को आप वहां ही खत्म कर सकते हो। तो आपके आगे ये बातें आएंगा ही नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत नजदीकी से हमारे बड़े दादियों को देखा है, उनके आगे छोटी सी बातें नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो कोई भी सहन न कर पाए, ऐसी ऐसी बातें थी। लेकिन उनके अंदर जो मेडिटेशन के आधार से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर जो रहे और सेल्फ एस्टीम के आधार से जो आगे बढ़े, उनके आगे एक उदाहरण है जो एक भाई आया, बहुत सारी बोलता गया और इतना प्यार से वो देखते रहे दादी। फिर जब उसने पूरा किया 15-20 मिनट के बाद कहा हो गया, देन शी गेव ठोली, तो उसको और थोड़ा गुस्सा आया तो वो चला गया। लेकिन बाद में उन्होंने हंसते देखा, हमने उनकी उनका सुन के हमको खराब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बेचारा वो कहां जाएगा, कहीं तो उल्टी करेगा, तो इट इज अ प्लेस वेयर ही हैज थ्रोन हिज यू नो इनसाइड व्हाट एवर ही हैड द प्रेशर्स, तो एटलीस्ट खाली हो गया तो ब्लेस किया। फिर कहा कल आके मेरे साथ भोजन करना। बींग ए लीडर, लीडर ऑफ द वन वेल नोन यूनिवर्सिटी, कभी प्रेस रिपोर्टर्स पूछते थे, पेपर्स वाले, टीवी वाले, दादी आप 9000 ब्रांचेस को चलाते हो, आपको टेंशन नहीं होती है? क्योंकि घर में 3-4-5-10 को संभालने में बहुत गड़बड़ होती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को संभालने में तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ 40,000 मेरे जैसे बहने, 60,000 भाई और 10,00,000 लोग हैं जो रेगुलर पार्टिशनर्स है, और बहनों को संभालते हुए आपके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है? दादी वेरी लवफुली शी सेड स्माइलिंग, आई एम नॉट एट ऑल ए हेड हियर, इट इज ही हु इज रनिंग द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दिस इज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड इज द वन बिहाइंड अस हु इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन, I am also a servant here. So same thing, Brahma Baba, he made 8 sisters who are 14, 15, 16, 17, 18. Trust, he gave up everything. Whoever came and told, we want to meet the head, Dada Lekraj, he said, I am not the head here, I am the servant. These are all my gurus. This showing dadis, that time, 1937, they were all youngsters. So you see today what the result is. The completely the trusteeship in life, completely the humble and understanding the laws of the universe, then naturally we can totally come out of the challenges without being disturbed, without being shaken within, and in a relaxed way you can come out of any type of challenges by the power of meditation and the wisdom, the knowledge what God is giving to you. So many, you know, big personalities who comes to the institution, any time is over, I can just share with you what are all their challenges, but how they come out of their drawbacks, their weaknesses, because weaknesses are the threats which really doesn't make us to, you know, go above the challenges. Himalaya may be there when you are in a flight, Himalaya becomes only so much. The meditation is nothing but shifting consciousness to reality and fly, withdraw 1 second, I am a light, then fly beyond the five elements. You are there, and when you see down, then nothing in front of you. You will have such touchings, what I should do, what not. The power to discern, power to judge things in a right time, in a right way. Then putting other powers where to accommodate, where to face the situation, where to withdraw myself, that is like a tortoise, to be a karma yogi. Then doing things, right things in a right way. The whole of your life, you will do all right actions in right time. So that is the power of meditation, to come out of the challenges very easily, whatever may be the challenge. So saying so, I request morning and evening and whole day, apply this knowledge, apply the meditation powers, and never to leave the practice of meditation, the right meditation which connects you with the Supreme Source. That's what I wish from all of you. Thank you so much. ओम शांति।
आदरणीय अंबिका दीदी जी का बहुत थैंक्स देते हैं। बहुत ही वैल्यूबल शब्दों में उन्होंने सुंदर रीति से परिवर्तन और चैलेंज को वर्णन करते हुए ये समझाया कि मैं कौन हूँ। तो अंत में हमें ये समझ में आता है कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली बहुत ही पावरफुल शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। तो फिर से हम दीदी जी का उदाहरण देते हुए, कितनी संस्था के यज्ञ का परिचय हिस्ट्री सुनाते हुए बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब 1 मिनट के लिए खड़े होंगे, एक छोटे से एक्टिविटी है। तो आप सब स्टेज पर जो बैठे हैं बैठे रहेंगे, एक संकल्प करेंगे और अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, ठीक है? तो मैं परिवर्तन प्रक्रिया को एक्सेप्ट करते हुए, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। तो अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, तो आई एम मोर पावरफुल देन सर्कमस्टेंस, आई एम ए पावरफुल सोल। थोड़ा और टाइट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और थोड़ा टाइट करेंगे, थोड़ा और टाइट, जब तक वो अंदर सिंक ना हो कि मैं शक्ति हूँ, पावरफुल हूँ। और थोड़ा टाइट करेंगे और स्लोली उसको रिलीज करेंगे। तो अंदर आप फील करें कि मैं परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज बी सीटेड। अभी हम इनवाइट करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवत्सव जी को, जो आचार्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अधिष्ठान, जो संस्थान है, छात्र कल्याण के डीन, स्टूडेंट वेलफेयर के डीन है, चेयरमैन स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग सेंटर, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान प्रयागराज के भी आप फैकल्टी मेंबर थे, एनआईटी है वो, 35 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग टीचिंग लाइन में थे। और अभी जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, श्रीमद् भगवद गीता टीचिंग थ्रू आइडेंटिफाइंग व्हाट इज सतो, व्हाट इज रजो एंड व्हाट इज तमो, बहुत ही सुंदर स्लाइड्स वो प्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें हमारे मन में बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि कौन सी रजो है एक्शन, कौन सा तमो है और कौन से सतो है। साथ साथ श्री रामचरित मानस के भी वो इन ब्रीफ सबको ये समझाते रहते हैं और इसका ब्रीफिंग भी बहुत पावरफुल देते हैं ताकि वो बदलाव जो है बहुत हमारे जीवन में बहुत सहज हो, तो चैलेंज ना हो लेकिन बदलाव जो है चेंज बहुत सहज हो। तो अभी हम इनवाइट करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवत्सव जी को।
ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी माँ जी, अंबिका जी, शशि दीदी जी, छाया जी, आदरणीय डॉक्टर जी एस पोपली जी, हम सभी लोग आज इस सत्र में परिवर्तन और चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इस सभागार में बैठे हुए सभी ज्योतिरात्माएं मन, जिनके आने से इस एक प्रकाश उज्ज्वल हुआ है कि हम सब लोग जितनी भी बातें कर चुके हैं कम समय में कैसे इसको दूर करना है, ये परिवर्तन कहां कहां हम देख रहे हैं और क्या करना है, इस पर थोड़ा सा चिंतन शेयर करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघय पातमहं वंदे परमानंद माधवम्। इन छात्रों को या नवयुवकों को परिवर्तन की बात लगातार हम लोग सोच रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अभियांत्रिकी के 3 दशक के परिवर्तन को देखने का जो अवसर मिला, जिसमें प्रकृति और मानव धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए, उन मंत्रों से जिससे आह्वान करते थे वो धीरे धीरे छूटते गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 ताप जिसकी बात हो रही है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन 3 तापों से गुजरता हुआ ये प्रकृति और मानव आज श्रुति और स्मृति के आधार पर ही परिवर्तन को देख पाता है। श्रुति मतलब अपने शास्त्र, रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, और उसके बाद उस परिवर्तन को स्मृति के आधार पर मतलब आचार्यों की शिक्षा दीक्षा के बाद हम तक पहुंचता है और 100 वर्ष तक देखने का अनुभव जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम सब अगर प्रकृति को देख रहे हैं तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को देख रहे हैं, उस पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है इस पर दिशा निर्देश देने के लिए हम सब लोगों ने खाली थोड़ी देर के चिंतन को भगवान से प्रार्थना किया है कि इस समय जो अभियांत्रिकी का क्षेत्र है जिसमें सारे पेरेंट्स का फोकस है कि उसका बच्चा IIT के थ्रू, NIT के थ्रू, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कहीं से भी कर ले, कुछ करे, लेकिन इंजीनियरिंग जरूर कर ले। पता नहीं कैसा ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग अगर नहीं करता है तो उसका कैरियर सफल नहीं होगा। ये एक भ्रम, कलयुग का बड़ा भ्रम है जिसने दृष्टि दोष पैदा कर दिया है। और दृष्टि दोष क्या करवा रहा है? दृष्टि दोष हमारे को बीच में रखकर उन्हीं चीजों को, भौतिक संपदाओं और संस्कृतियों को टच कर रहा है, संस्कृतियों का नाश कर रहा है, संपदाओं को बढ़ा रहा है। अगर हम सब लोग अपने शास्त्रों में आए हुए किसी बात को चिंतन करें तो हमने भी 4 युग सुने हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। बहुत से आचार्य ऋषिगण जिनकी प्रार्थनाओं से हम सब लोग बचते आए हैं, आज भी बाबा दादी के इस आश्रम में, इस आंगन में परमपिता के आशीर्वाद से नारायण एकादशी के दिन ये चर्चा कर रहे हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में मां को देखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इन वेदों से निकली हुई चीजों को कैसे पहुंचाया जाए और उस पर क्या धीरे धीरे हम कर पाए, इस पे विचार करते हुए हमने सोचा कि अगर हम देखें सतयुग को तो ये गंगा यमुना सरस्वती की तरह पवित्र था। इसमें हमने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते गए तो हमने देखा संस्कार त्रेता में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए और प्रयाग हमारा एक केंद्र है जहां से हम बिलोंग करते हैं। ये चित्रकूट और अयोध्या के बीच का स्थान है जहां पर श्रृंगवेरपुर धाम पर भी भगवान रुककर एक संदेश देते हुए भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेते हुए तब चित्रकूट गए थे। नई शिक्षा नीति में अब हम कह रहे हैं कि इसको भी बताओ। तो भारत क्या कर रहा है? भारत जब कुछ नया परिवर्तन बदलना होता है तो पहले कलयुग को हम अलाउ करते जाते हैं कि अब पहले इस परिवर्तन को और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। नई शिक्षा नीति 2020, इसमें नया क्या है? बच्चों को बताओ कि गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, आचार्य से कैसे दीक्षा लेते समय हमें भाव क्या रखने चाहिए। एआई को कंपलसरी करना है, क्योंकि एआई को अगर कंपलसरी नहीं रखते हैं तो जो 17 सेक्शन इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे हैं, यूनाइटेड कॉलेज में, वो 24 होने हैं और सभी को इंजीनियर बनना है। ये कंप्यूटर कब आया? कंप्यूटर आया 86 में जब हमारे मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन हम लोग धीरे धीरे इससे कैसे बचे, इस पे बात करें समय सीमा में। तो द्वापर में ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ चलते हुए आगे जब कलयुग भी धीरे धीरे मर्ज हो गया, काफी दिन तक चल गया, उसमें हमने देखा कि व्यवहार, जैसे अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो व्यवहार है वो कनेक्ट संयोजन करने के लिए हो गया। और ये जो विद्या थी, जो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, उसने शिक्षा का रूप ले लिया कि कितनी फीस और कितना पैकेज। अगर इतनी फीस और इतना पैकेज नहीं है तो हम अपने स्टैंडर्ड को रेट करने लगे। छोटे विद्यालयों में जाने में ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ इन चीजों पर काम और अच्छा हुआ है कि वहां पर शिक्षा दीक्षा आज बची हुई है। हम 3 स्लाइड में खाली कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आप एक कृपा करें कि आप सत रज और तम गुण त्रय विभाग योग, विषाद योग से कर्म संन्यास योग तक की भगवद्गीता तो पढ़ने का समय किसी को प्राप्त नहीं होगा। हमारे एक 80 वर्ष के ऊपर के आचार्य थे जिन्होंने कहा कि अभी तुम जब इस गीता को पढ़ो और पढ़ते जाओ। कब तक पढ़ो? उन्होंने कहा जब तुम्हारी उम्र 30 होगी तो 40 होगी, 50 होगी, तब अलग अलग अनुभव देगी। उनकी उम्र 80 थी, उन्होंने बताया अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूं। इसका मतलब है कि श्रीमद् भगवद गीता इतना पुराना शास्त्र है, इतना ज्ञानवर्धक शास्त्र है कि अगर हम इसमें से कुछ चीज भी बच्चों को बता पाए, जैसे सत क्या है, ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं सत है, फिर कहां लिखा है सत क्या करता है, इसके लिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में जाएंगे, गुण त्रय विभाग योग, तो हमें पता चलेगा कि ये सत है। और यही धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बढ़ता क्या जा रहा है? सत रज तम तीनों मिलके प्रकृति का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन बढ़ क्या रहा है? तम बढ़ता जा रहा है, रज बढ़ता जा रहा है। कैसे? अगर इसको हम देखें तो थोड़ी स्लाइड हेल्प करेंगे। किन चीजों से देखा जा सकता है कौन सा सत है, कौन सा तम है? अगर हम देखें तो म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, वोकल म्यूजिक और लाउड म्यूजिक। तो शिक्षा संस्थानों में आजकल क्या है, लाउड म्यूजिक में पूरे 5000 स्टूडेंट्स हैं और लाइट म्यूजिक को पहचानने वाले स्टूडेंट्स खत्म हो गए हैं। अगर आप बांसुरी बजा दें और आप शहनाई बजा दें और पूछें कि ये कौन सा बज रहा है, तो ऐसा प्रयोग किया जा चुका है कि उस आवाज को पहचान नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि हम सभी लोग उस दिशा को देख भी रहे हैं और आगे बढ़ते समय ये भी समझ रहे हैं कि विनाश आ रहा है, लेकिन उसकी हम कुछ तैयारी नहीं कर पा रहे। तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी करने का एकमात्र साधन है कि हमें बच्चों को सत रज तम की 3 स्लाइडों को दिखाना है और उनके हर व्यवहार में सत और रज तम को फिल्टर करके उनको दे देना है। इसमें कुछ शोध कार्य, मैं स्पार्क का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको वहां जाके विजिट करके बहुत सी बातें जो हमने कभी देखी थी 2002-3 में उस पे बल मिला और हम सब लोग पे कार्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम म्यूजिक में भी देखें या वस्त्र में भी देखें तो वस्त्र में भी कलर में भी सत और रजतम है। कैसे है इसको जानने के लिए हम सब लोग एक लंबे लंबे सेशन और कॉन्फ्रेंस को अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लान कर रहे हैं और से आशीर्वाद चाहेंगे कि वो जहां पर अभियांत्रिकी शिक्षा, क्योंकि अभियांत्रिकी ही विनाश की तरफ बढ़ रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, विज्ञान भी विनाश की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि विनाश की सारी चीजों को बुद्धि में पहले कलयुग ने अपना घर बना लिया है, उसको सोचने का संयोजन का तरीका बदल दिया है। क्यों बदल दिया है? क्योंकि जैसे मां गंगा का मंत्र देखें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु, ये मंत्र पढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया जाता था, आज भी है। लेकिन हम गंगा सफाई के किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करते थे, उसमें कितने हजार करोड़ आएंगे इसकी बात हमने नहीं सुनी थी। हमने तो पिछले एक दशक डेढ़ दशक में देखा कि जितने जितने प्रोजेक्ट, जितने जितने बड़े पैसे, उतने ही ज्यादा करप्शन, उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि सिर्फ हमें अपनी पुरानी प्रकृति को संजोना है और ध्यान रखना है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है, जैसा कि सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोबाइल से भी दिक्कत आ रहा है, तो ये मोबाइल से दिक्कत जो आ रहा है इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसके लिए अभी हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे क्या करें। इसका मतलब ये है कि हमको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमें बच्चों की एक ऐसा टेस्ट रिपोर्ट कराना है जिसके लिए हमारी टीम मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग सेंटर की लगी है कि अभियांत्रिकी के छात्रों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करके कुछ रिपोर्ट बनाई जाए, उसके आधार पर उनको विभक्त किया जाए और विभक्त करके सेशन लिए जाएं, जिससे इनमें ये विकास धीरे धीरे हो कि वो अपनी प्रकृति का संतुलन करें। नई शिक्षा नीति ने हमने बहुत से कोर्सेज भी लिए हैं जिससे हम सब लोग इस शिक्षा में धर्म, अध्यात्म और प्रकृति, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस में भी कैसे हम मंत्रों को जोड़ेंगे, कैसे हम प्रकृति को जोड़ेंगे, इसको धीरे धीरे हम सब लोग शोध के लिए अपनी टीम के साथ में कार्य कर रहे हैं। जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, इन सबको एम्पावर किया है भगवान ने कि आप जब प्रकृति में परिवर्तन आए तो आप कुछ करना। ये कॉन्फ्रेंस 18वीं बार हो रही है लेकिन ये पहुंचने का मौका बहुत से लोगों को, हमको स्वयं यहां पर पहली बार मिला है। इनके सेशंस को मैं प्रयागराज में पीस ऑफ माइंड को टीवी में खूब देखा करता हूं, लेकिन यहां पहुंचकर आज नारायण एकादशी के दिन भगवान ने कृपा की है कि हमको यहां तक आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचाया है। ये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो में तीन त्राप है। हमारी स्लाइड को हेल्प कर दें, नहीं मूव कर रही है। तीन त्राप दैहिक दैविक भौतिक को शॉर्ट में कैसे समझेंगे? कुछ चीजें परिवर्तन हम अपने लेवल पे सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। हम अपना सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, डिनर सेट, इन सब की परफेक्ट डिजाइन करते हैं और जो मिस है वो है माइंडसेट। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है, जैसा पहले भी सुना। कौन सा? देखिए, एक रज पे थोड़ा आप देखें, हमने जितने भी माइंडसेट को क्रिएट करने का फॉर्मूला कहीं से भी स्टडी किया, उसमें दो बातें पाई कि बच्चों को आजकल चौक और बोर्ड से ना पढ़ा के अगर आप एक पेज की स्लाइड दे देंगे तो बच्चा खुश होकर ले लेता है, पढ़ भी लेता है। तो इसका मतलब बिहेवियरल जो चेंज आ रहे हैं उसके साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको घर में बताना पड़ेगा, देखो तुम काले कपड़े ज्यादा पसंद कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसको फोर्स नहीं करेंगे, काले हटा देंगे। तो अपने आप धीरे धीरे बच्चे में ये पता चलने लगेगा कि मुझे काला ज्यादा नहीं पहनना है। लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक फैशन है, पैशन है, वो रज तत्व को बढ़ा रहा है, लेकिन वो जा किधर रहा है? इधर चला जा रहा है। कैसे जा रहा है, इससे क्या करना है, इससे होता क्या है, ये बहुत डिटेल है और इसमें हम डिटेल कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग की बहुत से छात्रों को, शोधकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने अपने शोध को इस बारे में लाकर हमसे जुड़कर और विश्वविद्यालय से जुड़कर, क्योंकि जुड़ना तो एक सही है परमपिता से, जिन्होंने ये सतरज तम भी बनाया है उन्हीं की प्रकृति है, माया भी उन्हीं की है। उन्हीं की शक्तियों से ये संसार चल रहा है और हमें सिर्फ विटनेस होना है कुछ क्षणों के लिए। ब्रह्मा जी के समय से अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास तो समय क्षण भर का है, इससे ज्यादा तो समय ही नहीं दिया है। तो अगर समय हमें मिला है तो क्या करना है, ये आने वाली पीढ़ी को भगवद गीता के छोटे छोटे स्लाइड से उनको बताना है कि तुम कान में दिन भर जो म्यूजिक लगा रहे हो ये फोर्स करके नहीं हटाना है, कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौती है एडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम गुस्से से उसको डांट रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसको धीरे से हटा देना है। अभी तो एक प्रयोग और किया गया कि मोबाइल को ड्रॉअर में एक घंटे बंद करने का मेथड बनाया गया शाम को, कि आप एक घंटे ड्रॉअर में रख के बाहर आओ। बच्चे को बड़ी उलझन होती है कि इस एक घंटे में क्या होगा, और अब तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अरे कौन सा युग आने वाला है, और इसके परिवर्तन के लिए कितने कम लोग तैयार हो रहे हैं। आप सब देवात्माएं तो फिल्टर होके यहां पहुंचे हैं, जिनको परिवर्तन के लिए भगवान ने अलाउ किया है। अभी इसके बाहर कितने करोड़ लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है और वो उस दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं जिस दिशा में नहीं होना है। तो ये दोनों परिवर्तन की लड़ाई बाद में भगवान संयोजित करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो भी कुछ न कुछ अपनी लीला करते रहते हैं। अपनी लीला के पीछे उनका क्या है कि वो सत्य को बाद में बचा देंगे, और किस काम में लगा देंगे, जिस कार्य में बड़ा कार्य होना हो। जैसे इस विश्वविद्यालय का जो कार्य है इतना नैतिक और इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ इस विश्वविद्यालय की धरती को प्रणाम करते हुए, गंगा यमुना सरस्वती रूपी देवियों को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हमने जो भी थोड़े समय में प्रार्थना की है इसमें अपनी शक्तियों का समावेश करके इंजीनियरिंग छात्रों को वरदान दें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ही सरल और बहुत गहन शब्दों में आपने कहा कि अगर चुनौतियां नहीं है, कोई भी एजुकेशन फील्ड में कोई भी प्रोफेशन हो तो चुनौतियां नहीं है तो वो बदलाव नहीं ला सकते। तो बदलाव जो है तीन स्टेजेस पे हो, सतो रजो और तमो। तो हम सब जानते हैं कि यही दिशा में ब्रह्मा कुमारी भी काम कर रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हो या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स हो जो ब्रह्मा कुमारी देते हैं, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई चेंज परिवर्तन आए तो हमारे अंदर क्या पावर है, हमारे अंदर कौन सी वो शक्ति है जिससे वो परिस्थिति को हम सरल रीति से पार कर सकें। तो उन शक्तियों को हम सब में भरने के लिए, जमा करने के लिए, जैसे हम पहले दिन से सुनते आए कि मेडिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो मेडिटेशन क्या है वो भी हम सब करते आए, लेकिन मेडिटेशन के जो सत्र है उसमें हम पाएंगे कि वाइब्रेशंस परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो यहाँ का वातावरण, जो यहाँ पर माहौल है मेडिटेशन का माहौल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमें दूसरी दुनिया में ले जाए। तो हम सब सतर्क होकर के इस सुंदर मेडिटेशन सेशन करेंगे जो शांति का अनुभव कराने के लिए हम सबके बीच अभी केशवशी दीदी जी हैं जो एमए किए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से, एलएलबी पढ़े हैं, एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सतना एमपी, वहां भी प्रैक्टिस की है। 1995 में जब उनको ज्ञान मिला तो एडवोकेट प्रोफेशन को छोड़ते हुए राजयोगा का अभ्यास करने शुरू करी। सेंटर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी पतेरी सतना सेंटर, 21 गीता पाठशालाएं चलाते हैं ब्रह्मा कुमारी के सतना एमपी में, जोनल कोऑर्डिनेटर भोपाल जोन स्पार्क विंग ब्रह्मा कुमारी। उनका बहुत ही सुंदर संक्षिप्त अनुभव यहाँ पर है, क्योंकि राजयोग का मेडिटेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए। तो उसमें हम स्वयं भी बहुत परिवर्तन या अनुभव कर सकते हैं। इनका जो सुंदर अनुभव है, जब उनको माइग्रेन हुआ 1992 में, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत जगह उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ काम का नहीं रहा। तो तब जाकर उनको लगा कि जब हम राज्यों का प्रैक्टिस से ये बदलाव ला सकते हैं तो क्यों ना हम इसको भी हम राज्यों का अभ्यास से, प्रयोग से इसको खत्म करें। तो करते करते उन्होंने परमानेंटली सदाकाल के लिए माइग्रेन को विदाई दिए, और ऐसे उनके अनुभव से बहुत लोगों को लाभान्वित भी किए हैं। शशि दीदी जी जो बहुत प्रयोगी और योगी भी हैं, तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमें इस शांति की जर्नी में ले जाए शशि दीदी जी। थैंक यू।
ओम शांति। अभी आप सभी इतने महान वक्ताओं का उद्बोधन सुन रहे थे। दो दिन से लगातार आप सभी सुन रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, जितने प्यार से सारी बातों को श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा का आवाहन करूंगी कि वो हम सबके साथ कंबाइंड होकर हमारी अंतर जगत की यात्रा में आप सभी को शांति का, प्रेम का, सुख का और समाज में परिवर्तन लाने के लिए सद्भाव का समावेश करें। तो सम्माननीय मंच, आदरणीय दीदी एवं हमारे भाई साहब छाया दीदी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। हम सभी बदलाव के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि सब में बदलाव होना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों में, हमारी परिस्थितियों में। लेकिन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम सोचते हैं और ये चाहते हैं कि ये बदल जाए तो ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी, तो हम वही भूल कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिंदगी भर हम यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। तो हमें अपने आप को बदलना है। हम बदल जाएंगे तो जग बदल जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आप सभी सुन रहे हैं कि कैसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, अगर उनकी चुनौतियों को हम स्वीकार कर लें तो परिवर्तन अवसर बन जाता है। जैसे हम सभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अनेकों बार पढ़ा हुआ है हमारा, कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, सुबह राज तिलक होना था और फिर क्या हुआ शायद बहुत लोग जानते होंगे, और या मैं कहूँ सभी लोग जानते होंगे कि उनको वनवास जाना पड़ा। ठीक है। और ये जो परिस्थिति उनके सामने आई, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अवसर के रूप में स्वीकार किया और राम बन गए तो बन गए। आज घर घर राम की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके और परिवर्तन किया। ठीक है। तो समय का अभाव है थोड़ी, हम सभी सामाजिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, स्वयं में परिवर्तन के लिए और अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए अपने आप को उस अंतर जगत की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ हमारा सोर्स ऑफ परमात्मा जो है हमारे, कि उनसे सोर्स मिलता है हमको। हमारे सोर्स कहाँ पर रहते हैं ये आज हम जानेंगे। वैसे तो दो दिन के सत्र में आप सभी ने ये जाना होगा कि हम कौन हैं। ये सभी ने जान लिया? सभी ने जान लिया? हाथ उठा के बताएंगे हु आई एम, हम कौन हैं। यहाँ कहते ओम शांति, आई एम पीसफुल सोल। ठीक है। फिर कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आई एम पावरफुल सोल। ऐसा आप बहुत देर से सुन रहे हैं। ठीक है। तो मैं कौन हूँ, अपने आप को तो पहचान लिया, और हमारे पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है वो कौन है, आज उन्हें भी पहचान लिया होगा। ईश्वर एक है वो भी जान लिया होगा। तो भाई साहब ने कहा ना कि आदम खुदा नहीं है लेकिन खुदा के नूर से जुदा नहीं है। तो जिसको माध्यम बनाया परमपिता परमात्मा ने, वो आदम आदि देव ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं ना, तो क्रिश्चियन उसे आदम कहते, वो मुस्लिम उसे आदम कहते हैं और क्रिश्चियन उसे एडम कहते हैं। वो एक ही है, सिर्फ नाम का अंतर है। ठीक है, तो आज हम सभी ने उस सुप्रीम सोल को, उस सुप्रीम पावर हाउस को जान लिया, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसका जहाँ सोर्स होता है ना, वो ऑटोमेटिक उसकी ओर खिंच जाता है। जैसे पानी को हम कितनी भी ऊंची स्थान पर रखें, पर वो नीचे की ओर बहता है, क्योंकि उसका सोर्स नीचे है ना? ज्योति को, एक प्रकाश को हम कहीं भी रखें, कैसे भी ढक के रखें, लेकिन उसका प्रवाह किस ओर होगा? ऊपर की ओर होगा, कि उसका जो सोर्स है वो ऊपर है। जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा ऊपर है, ऊपर वाले से डरना। कभी कोई कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कि ऊपर वाले से डरना। तो भगवान कहाँ है, उनका निवास स्थान कहाँ है? ऊपर है। परमात्मा परम धाम के निवासी हैं और वो सुप्रीम पावर हाउस हैं। हम सभी ने कितने बार अपने जीवन में गाया होगा कि माता पिता बंधु सखा स्वामी सब आप हैं हमारे, लेकिन कभी अपने आप से पूछने की कोशिश किया, ये जानने की कोशिश किया कि जो हम गा रहे हैं, क्या सारे संबंध परमात्मा के साथ हम रख भी रहे हैं? क्या आंसर होगा आपका? सारे संबंध परमात्मा के साथ हैं हमारे कि सिर्फ गीत गाया है? तो अगर सही आंसर देंगे तो मैं समझती हूं कि आज दिन तक हम गाते ही रहे कि आप माता पिता बंधु सखा स्वामी हैं हमारे, हमने उन्हें वास्तव में ये माना नहीं। अगर सारे संबंध उस परमात्मा के साथ होते तो शायद हमारा जीवन इतने मुश्किल दौर से कभी नहीं गुजरता, सारी समस्याएं सारी परिस्थितियां आसान हो जाती, सारे चैलेंजेस को फेस करना बहुत आसान होता। ठीक है, तो चलिए, आज तक हम जो नहीं जानते थे, जो नहीं मानते थे, आज हमें पता चला है, तो उस सुप्रीम पावर हाउस से हम अपने आप को चार्ज करेंगे। क्योंकि यहाँ अभिनय करते करते ना हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसे फिर से चार्ज करेंगे। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है ना, तो कैसे पता चलता है डिस्चार्ज है? कि थोड़ी थोड़ी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है ना, कारण अकारण हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ठीक है, तो जिन देवी देवताओं का हम पूजन करते थे वो भी मनुष्य हमारे जैसे ही थे, लेकिन वो देवी देवता क्यों कहलाते थे? क्योंकि उनके वश में मन था, वो हमारे पूर्वज हैं, उनके वश में मन था इसलिए वो देवी देवता कहलाते थे। हम मनुष्य क्यों बन गए? क्योंकि हम मन के वश हो गए। तो जब मानव मन के वश हो जाता है तो मनुष्य बन जाता है, और जब मानव के बस में मन हो जाता है तो वही मानव देव बन जाता है। तो आइए हम सभी अपने आप को चार्ज करने के लिए। ओम शांति। इस पंच तत्व के शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य ज्योति, डिवाइन सोल, परमात्मा की संतान,
शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, इस शरीर के द्वारा कोई भी कर्म करने वाली मैं वो चैतन्य ऊर्जा हूं। इस रंगमंच पर आए, यहां अभिनय करते हुए मुझे 5000 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब मैं अपनी बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए सुप्रीम पावर हाउस के पास जाने के लिए तैयार हूं। अनुभव करें कि मेरे मस्तक से चमकती हुई मणि आत्मा इस पंच तत्व के शरीर से निकलकर पंच तत्व की दुनिया के पार चांद सितारों के भी पार सूक्ष्म लोक के भी पार परम धाम अपने मूल निवास स्थान पर पहुंच गई हूं। जहां मेरे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर, सर्व गुणों के भंडार विराजमान है, मैं आत्मा अपने पिता के अति निकट विराजमान होती हूं। उनके सानिध्य का अनुभव कितना सुखद है। जैसे मेरा स्पर्श उनको होता है, उनकी जो शक्तियां हैं उनके जो गुण हैं मुझे आत्मा में समाहित हो रहे हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से अपने आप को चार्ज करके इस रंगमंच की ओर अभिनय करने के लिए समाज में सद्भाव लाने के लिए वातावरण को बदलने के लिए परिस्थितियों के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तूफान को तोहफा बनाने के लिए एकदम रेडी हूं। और परम धाम से नीचे की ओर मैं चल पड़ी धीरे धीरे। पंच दुनिया, पंच तत्व की दुनिया में पहुंचकर, पंच तत्व के शरीर में प्रवेश कर भक्ति के मध्य पुनः विराजमान हो गई। अब मैं शक्तियों से भरपूर अपना हर कर्म करने के लिए तैयार हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। शशि दीदी का बहुत धन्यवाद तो इस सुंदर अनुभव के लिए। तो जैसे कि हम बहुत सुंदर डिस्कस कर रहे थे कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, तो प्रकृति से भी हमें एक बहुत सुंदर चैलेंज आया है। बहुत जोर से बारिश हो रही, तो इस चैलेंज को हम कैसे सामना करेंगे? तो ये हम सबके साधन अनुसार जैसे हम सुविधा अपनाएं ऐसे इस चैलेंज को भी हम पार करेंगे। तो प्रकृति का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, तो हम सब वक्ताओं का भी बहुत धन्यवाद देते, आदरणीय अंबिका दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, शशि दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी जी आदरणीय गेस्ट का सम्मान करें और गॉडली गिफ्ट भी देवें।